ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات، اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، پچھلے دنوں مالدیپ میں سارک کا سربراہی اجلاس منعقد ہوا۔ سارک علاقائی تعاون کی تنظیم کا نام ہے اور اس کا مقصد علاقائی ملکوں کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینا ہے، اور ظاہر ہے کہ تجارتی اور اقتصادی تعاون کے فروغ کی اہمیت کسی بھی لحاظ سے قابل انکار نہیں۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ 1985 کے اشرے کے بعد سے اب تک جب بھی ساک سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی اور اس میں ہندوستان اور پاکستان کے سربراہان مملکت نے شرکت کی، تو اس اجلاس میں جو بھی موضوعات اقتصادی و تجارتی حوالے سے زیر بحث آئے ان کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن دونوں ملکوں کے سربراہوں کی ملاقات یا ان کے درمیان کسی بھی طرح کی بات چیت اور مذاکرات یا ان کی موجودگی ہی دیگر تمام معاملات پر حاوی ہو جاتی ہے، اور دنیا کے ذرائع ابلاغ سمیت خاص طور پر علاقے کے ذرائع ابلاغ کی نگاہیں اور توجہ انہی دونوں رہنماؤں کی ملاقات یا ان کے ممکنہ مذاکرات پر ہی مبذول رہتی ہے۔ چنانچہ اس بار بھی مالدیپ میں بھی کچھ ایسا ہی نظارہ دیکھنے میں آیا جب ہندوستان اور پاکستان کے سربراہان مملکت نے ملاقات کی، اور اس بار کی ملاقات اگر یہ کہا جائے کہ گزشتہ کئی بار کی ساک سربراہی اجلاس کے موقع پر ہونے والی ملاقاتوں سے کافی بہتر اور خوشگوار ماحول میں ہوئی تو شاید بے جانا ہوگا۔ چنانچہ ہندوستان کے وزیر اعظم منموہن سنگھ نے تو یہاں تک کہہ ڈالا کہ پاکستان کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی مرد امن اور مرد صلح ہیں، اور اس بات کا دونوں رہنماؤں نے اعادہ کیا کہ یہ ملاقات دونوں ملکوں کے تعلقات میں نئے باب کا خوشگوار اضافہ ہے۔ تو کیا اس سے پہلے جو موہالی میں کرکٹ اسٹیڈیم میں ملاقات ہوئی تھی اور جو قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں مگر کافی حد تک وہ دم توڑ گئیں، اب ایک بار پھر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اب جو نئے باب کا آغاز ہوا ہے یہ آغاز ایک منزل کی طرف رواندار دما رہے گا اور یہ سفر آگے کی طرف جاری رہے گا یا پھر صرف بیان تک ہی محدود ہو کر رہ جائے گا۔ چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں اس وقت ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار اور ممتاز دانشور ڈاکٹر وید پرتاپ ویدک صاحب۔ ویدک صاحب، آداب عرض ہے۔
آداب عرض کرتا ہوں۔
جی شکریہ آپ کا۔ یہ جو مالدیپ میں سربراہی ملاقات ہوئی ہے یا چھوٹی کانفرنس ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، اب کئی دن گزر جانے کے بعد کیا اس کی مٹھاس ویسے ہی باقی ہے یا کچھ پھیکی پڑ گئی ہے؟
نہیں، مٹھاس تو بہت ہے اس بات میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا اثر پاکستان میں بھی کافی اچھا ہوا ہے اور ہندوستان میں بھی زیادہ تر لوگوں نے اس کا استقبال کیا ہے۔ لیکن یہ صرف ایک بات نہیں ہے، اس کے پیچھے ایسا نظریہ ہے، ایسا بیک گراؤنڈ ہے کہ جس نے ہمارے وزیر اعظم کو یہ کہنے کے لیے تیار کیا کہ پاکستان کے وزیر اعظم ایک شخص امن ہیں۔
جی
دیکھیے، کچھ دن پہلے ہی ایک جو کامرس کا سمجھوتا ہوا، پاکستان نے بھارت کو موسٹ فیورڈ نیشن کا خطاب دیا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چیز ہے۔ پچھلے 60 سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا، जो इस बार पाकिस्तान की सरकार ने हिम्मत करके कर दिया। ये करने के बाद, ये ऐलान करने के बाद कि भारत और पाकिस्तान के बीच तिजारत खुल जाएगी, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की सरकार बड़ी मुसीबत में फंस गई। रोज कभी इधर कभी उधर बयानबाजियां करती रही, लेकिन गिलानी साहब इस पर पूरी तरह से टिके रहे। और मैं समझता हूं कि ये बात अपने आप में इतनी बड़ी है कि ये कश्मीर को हल करने से भी बड़ी बात है। अगर दोनों तरफ से तिजारत खुल जाए और रास्ते खुल जाएं, तो आप सोचिए कि पूरे साउथ एशिया की शक्ल बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? कि ईरान तक हिंदुस्तान की चीज़ें और ईरान से भी ऊपर सेंट्रल एशिया के जो रिपब्लिक्स हैं वहाँ तक हिंदुस्तान की चीज़ें और लोग बाग फ्रीली आ जा सकेंगे, और उधर के लोग बाग वो सारे इधर आ जा सकेंगे। यानी ये पूरा इलाका ही खुल जाएगा, और पूरा इलाका अगर खुल जाए तो आप सोचिए कि इतना वेस्टर्न इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा पाकिस्तान का, पाकिस्तान के व्यापारियों का, पाकिस्तान की आम आवाम का, कि फिर कोई झगड़ा नहीं करना चाहेगा। कोई ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि एकदम दोनों मुल्क किसी भी मुद्दे को लेकर भिड़ जाएं, कभी नहीं चाहेंगे। तो हम समझते हैं कि इस सारे खित्ते में अमन का ये सब कायम करने के लिए हम समझते हैं कि सबसे बेहतर माहौल इन दिनों बना है। और इसमें जो हमारे वजीर आजम ने कहा है वो बहुत अच्छी बात कही है, और मैं समझता हूँ कि उसका असर पाकिस्तान के पूरे एस्टेब्लिशमेंट पे होगा।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर होऊंगा। वैसे इस वक्त चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो, जहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज दानिश्वर और सीनियर तर्जी निगार सफदर रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम।
जी सफदर रजा साहब, आपने हमारे दिल्ली स्टूडियो के मेहमान की गुफ्तगू यकीनन सुनी होगी। मैं बहरहाल उनके ही गुफ्तगू के तनाजुर में आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान को पसंदीदा तरीन मुल्क का दर्जा करार दिए जाने के बाद, अब मालदीव में दोनों मुल्कों के रहनुमाओं ने जिस दोस्ती के सफ़र की बात की है और जिस दोस्ती के सफ़र को आगाज़ करने की बात की है, तो वो सफ़र आप और पाकिस्तान के दीगर हलकों में क्या समझा जा रहा है कि कितनी तेज़ी से और कितनी मुश्किलात के बग़ैर आगे की तरफ बढ़ता रहेगा?
बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि वैदक साहब ने दिल्ली से जितनी पूर्व उम्मीद बात की है, मैं उसमें रुकावट तो नहीं बनना चाहता। मैं उसी उम्मीद को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जब, क्योंकि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की बात होती है तो हमें बरसर ज़मीन हकायक से ज़्यादा पूर्व उम्मीदी को फ़रोग देना है और हमने लोगों को करीब लाना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी सी यहाँ गलतफहमी हो गई है। कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा कि हिंदुस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देने के लिए पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा। कल ही पाकिस्तान की कट्टरपंथी जो मजहबी जमातें हैं, दीनी जमातें हैं, पोलिटिकल जमातें हैं, उन्होंने एक दिफाए पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देने की बहुत बड़ी रुकावट पैदा करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे हलके हैं, बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की बाहर और पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो चाहती हैं कि हम हिंदुस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दें। चार जंगों, बेशुमार आविजशों और बहुत बड़ी तबाहकुन हथियारों और एटमी असलों से लैस होने के बाद इन दो मुल्कों में दोस्ती और एक दूसरे के साथ निगोसिएशन ही इस मसले का हल है। और जैसे कि बात हुई कि इसमें कश्मीर की क़यादत क्या कहती है, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो हमारी पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो कि ब्रॉडकास्टिंग की मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि दो कश्मीरों के दरमियान पहले ही तिजारत भी हो रही है, व्यापार भी हो रहा है और लोग भी आ जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस स्पिरिट को बरकरार रखना है और हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने जो अद्दू में जो बात की है, मालदीव्स में बात की है, और उन्होंने कहा कि ये मर्द अमन है प्राइम मिनिस्टर गिलानी, तो मैं ये समझता हूँ कि इस बात को आगे बढ़ाया जाएगा। और हिंदुस्तान ने 1996 में ही पाकिस्तान को पसंदीदा तरीन मुल्क करार दिया था तजारत के लिहाज से, अगरचे उसके बाद भी पाकिस्तान पर बहुत सारे नॉन टैरिफ और टैरिफ पाबंदियां थीं और वो बहुत सारे आइटम्स थे जो कि मोस्ट फेवर्ड नेशंस होने के बावजूद हमें एक्सेस नहीं था। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर पाकिस्तान ने ये फैसला किया है तो देर आयत दुरुस्त आयत की बुनियाद पर हम इसको दोस्ती का और एक अच्छे हमसायों का बहुत अच्छा पेश खैमा समझते हैं। और पिछले हफ्ते यानी 14 नवंबर को जो हमारी ट्रेड टॉक्स कंक्लूड हुई हैं तो उसमें भी हमारे ट्रेड के लिए दोनों मुल्कों के ताजर लोगों को वीज़ा देने की आसानी की बात हुई है और बहुत सारे पाकिस्तान ने भी टैरिफ जो आइटम्स थे जिनकी पाप हिंदुस्तान से तजारत नहीं हो सकती थी उनकी बात की है। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छा स्टार्ट है और इन दो मुल्कों के कई अरब लोगों के मुस्तकबिल का इस पर इन्हसार है और मेरा ख्याल है कि इसको वेलकम किया जाना चाहिए।
जी सदर साहब, आप ही से अगला सवाल भी करना चाहूंगा। आपने फरमाया कि वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि इसका इन्हिसार पार्लियामेंट से मंजूरी पर होगा, तो क्या पार्लियामेंट में कोई मुश्किल पेश आ सकती है जबकि हुक्मरान इत्तेहाद की अक्सरियत है वहां पर?
मैं ये समझता हूं कि जैसे कि पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसा तबसरा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को अभी मोस्ट फेवर्ड नेशन देने का स्टेटस नहीं दिया, लेकिन मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देने का इंडिया जाहिर किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान ने इसलिए किया है क्योंकि हिंदुस्तान बड़ा तिजारती मुल्क है और उसके साथ ज़्यादा आइटम्स की फहरिस्त है जो पाकिस्तान के साथ तिजारत कर सकते हैं, पाकिस्तान के साथ कम है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोगों का ख्याल है कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती मामलों में पाकिस्तान की मुज़ाकरात में एक मजबूत पोजिशन हासिल करने के लिए ये बात हुई है। और जहाँ तक इस बात का तल्लुक है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मैं पार्लियामेंट में से हम लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि हमारी पार्लियामेंट ज्यादातर जो है, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे एएनपी हो, यानी जो सरकार में चलने वाली पार्टी है, तो वो ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान से अच्छे हमसायों के ताल्लुकात चाहते हैं। तो पार्लियामेंट इसको, मेरा ख्याल है पार्लियामेंट में कोई मसला और कोई मुद्दा नहीं होगा, पार्लियामेंट इसकी मुखालफत नहीं करेगी।
बहुत शुक्रिया वैदिक साहब। हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म ने एक बात और अपने बयान में कही है, वो ये कि पाकिस्तान की फौज भी हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात के हक में है और हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात की बरकरारी के हक में है। एक सिविल वज़ीर आज़म दूसरे मुल्क की फौज के बारे में बयान दे रहा हो तो क्या इसकी अहमियत काफ़ी बढ़ नहीं जाती है?
ये तो बहुत अहम बयान हमारे वज़ीर आज़म ने दिया, क्योंकि हिंदुस्तान में तसव्वुर ये है कि पाकिस्तान में असली फैसले करने की ताकत अगर किसी में है तो वो फौज में है। तो हिंदुस्तान के लोगों को हमारे वज़ीर आज़म ने ये बात अच्छी तरह समझा दी है कि ये जो पसंदीदा तरीन स्टेटस इंडिया को दिया गया है इसमें फौज की कोई मुखालफत नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री ने ये बहुत ही अच्छा किया है। दूसरी बात जो गिलानी साहब ने कल कहा उससे मेरे मन में कोई चिंता पैदा नहीं हो रही है। ये जरूर वहां की संसद, वहां की पार्लियामेंट के पास जाना चाहिए। पार्लियामेंट की मोहर लगने के बाद ये और पुख्ता चीज़ बन जाएगी और पाकिस्तान की सारी आवाम अच्छा रिश्ता चाहती है हिंदुस्तान से। और मैं तो ऐसा सोचता हूं कि ये जो पसंदीदा तरीन स्टेटस जो मिला है इंडिया को, ये पाकिस्तान ने बड़ी मेहरबानी की है, पाकिस्तान ने बड़ी दरिया दिली दिखाई है और इसका फ़ायदा जितना हिंदुस्तान को होगा उससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि जितना भी माल भारत आएगा और भारत से जाएगा उसका किराया, उसका थोड़ा बहुत महसूल, उस पर उसका सारा लीवरेज पाकिस्तान को मिलेगा, बैठे बिठाए पाकिस्तान को जबरदस्त कमाई होगी और यही रास्ता बनाएगा एक बड़ी पाइपलाइन के लिए, गैस की पाइपलाइन, तेल की पाइपलाइन, और उस सब का इतना किराया पाकिस्तान को मिलेगा कि पाकिस्तान मालामाल हो जाएगा। इसके अलावा एक फायदा और है कि अगर पाकिस्तान किसी वजह से, मैं नहीं चाहता हूं कि नाराज हो, लेकिन मान लो नाराज हो जाए, उसको गुस्सा आ जाए, इंडिया पर आ जाए, ईरान पर आ जाए, तो दोनों की चाबी पाकिस्तान के हाथ में रहेगी। जब चाहे पाकिस्तान टेटुआ कस दे, पाकिस्तान कहे भाई तुम्हारी गैस नहीं जाने देंगे, तुम्हारा तेल नहीं जाने देंगे, तुम्हारा माल हमारे यहां से नहीं जाने देंगे। तो पाकिस्तान का पॉलिटिकल लीवरेज साउथ एशिया में सबसे ज्यादा हो जाएगा। इसमें हम समझते हैं कि पाकिस्तान के जो दीनी और मजहबी लोग हैं उनको भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए। इससे पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं है, इसका इस्लाम से कोई नुकसान नहीं है, इससे फायदा ही फायदा है। इस्लाम की जो बेहतरीन बातें हैं और वो पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी और सारे लोग समझते हैं कि भाई उन्हीं की मोनोपोली है उस पर, तो ठीक है। अगर रास्ते खुलेंगे तो रास्ते सिर्फ माल असबाब के लिए नहीं खुलेंगे, ख्यालात के लिए भी खुलेंगे। तो वो ख्यालात वहाँ से चल के इंडिया आए, वहाँ से चल के सेंट्रल एशिया जाए, वहाँ से चल के ईरान जाए, और पाकिस्तान में अगर कोई वाकई इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि सबको कबूल हो, सबके लिए फ़ायदेमंद हो, तो उससे पाकिस्तान की ही रोशनी बढ़ेगी, पाकिस्तान का इकबाल बढ़ेगा सारे मुल्कों में। इसलिए पाकिस्तान के लोगों को मैं तो समझता हूँ कि इसका सबसे ज़्यादा इस्तकबाल करना चाहिए। ये पाकिस्तान के मफाद इसी में है कि वो पूरा रास्ता खोल दे
जी।
और उससे आप देखें कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक लीवरेज वो भी बहुत बढ़ जाएगा
जी। सदर साहब, जैसा कि वैदिक साहब फरमा रहे थे कि स्ट्रेटेजी के एतबार से और सौकुलजैशी एतबार से, जोग्राफियाई एतबार से पाकिस्तान की इतनी अहमियत है और बैठे बैठाए उसको ट्रांजिट का इतना पैसा, इतना किराया मिलेगा कि वो मालामाल हो जाएगा, तो क्या ये बातें उन लोगों की समझ में नहीं आ रही हैं जिनकी तरफ आपने इशारा किया कि वो इस चीज़ की या इस अमर के मुखालिफ हैं कि हिंदुस्तान को पसंदीदा मुल्क का दर्जा ना दिया जाए या दिया जाए तो अभी ना दिया जाए, तो क्या उन जमातों को या उन ग्रोहों को इस बात का एहसास नहीं है?
बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि मेरा ये ख्याल है कि मैं बहुत ही अगर एहतियात के अल्फाज इस्तेमाल करूँ तो मुझे कम अज़ कम लफ्ज़ ये मिलता है कि वो अकल के अंधे हैं। जब 1999 में जनाब अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान की दौरे पे आए थे और लाहौर में उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे अपनी सारी रंजिशें भुलाई थीं और पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक नए बाब उनका दोस्ती का खुला था, तो उस वक्त इन्हीं लोगों ने लाहौर में उनके खिलाफ मुजाहरा किया था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई ताल्लुक और दोस्ती नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसा कि वैदक साहब कह रहे थे, पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान काफ़ी अच्छे ताल्लुक बने हैं। मिसाल के तौर पर पिछले ही महीने पाकिस्तान सिक्योरिटी कौंसिल का रुकन मुंतखब हुआ और हैरत की बात है कि हिंदुस्तान ने उसकी सपोर्ट की। उससे पहले पिछले साल जब हिंदुस्तान को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इश्यूज थे तो पाकिस्तान ने उनकी सपोर्ट की थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये माहौल बनता जा रहा है जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस में, और हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जब मालदीव में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात की है तो उन्होंने इस बात का भी उनके शुक्रिया अदा किया कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के लिए न सिर्फ ये कि अपना मुखालिफाना वोट इस्तेमाल नहीं किया बल्कि उल्टा हिंदुस्तान ने लॉबिंग की और हिंदुस्तान के सफीर जो अक़वाम मुत्तहदे में हैं उन्होंने भरपूर अंदाज में पाकिस्तान को मुबारकबाद दी, जो कि सफारती तरीक़ेकार से हट के पुरजोश मुबारक जैसे हमारे बरसग़ीर में तरीका है उन्होंने इस अंदाज में दी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये खुले सिर्फ मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात नहीं है, हम और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर हम करीब आते जा रहे हैं और अब मौका है कि हम सियाचिन के मसले पर, सर क्रीक के मसले पर और बहुत सारे और मुद्दे हैं उनको भी हल करने की तरफ इशारा करें। और वैदक साहब ने जैसे कहा कि जब उससे भी पहले मेरा ख्याल है पिछले साल पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के साथ ट्रांजिट ट्रेड का मुआहदा किया था उसमें हमने हिंदुस्तान को राहदारी की सहूलतें दी हैं कि वो वाहगे के रास्ते ट्रेन और सड़क के रास्ते अफगानिस्तान और बियॉन्ड यानी सेंट्रल एशिया में अपने सामान लेके जा सकते हैं। और जैसा कि वैदक साहब ने कहा ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान से जो है वो ट्रेड होएगी और बियॉन्ड ट्रेड होएगी और हमें बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में किराया मिलेगा, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान अगर उस बात से हट गया है लेकिन पाकिस्तान ईरान इंडिया जिसको IPI गैस पाइपलाइन कहते थे वो मसला अमेरिका की मुखालफत की वजह से पता नहीं क्यों खटाई में पड़ गया, अगरचे पाकिस्तान उस पर बरकरार है लेकिन तापी गैस पाइपलाइन जो कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से आएगी और वो भी पिछले ही महीने उस पर मुआहदा हुआ है तो उसमें भी हिंदुस्तान अभी शामिल नहीं है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन हो जाता है और हिंदुस्तान को यकीन हो जाता है कि पाकिस्तान में एक अच्छा अमन का माहौल बनता है। तो मेरा यह ख्याल है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए एनर्जी कॉरिडोर भी बन सकता है और दूसरे मामलात भी हैं जो कि MFN के साथ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान आएंगे।
जी वैदक साहब, माजी में जब इस तरह के ताल्लुकात में पेशरफ्त की अलामतें पाई जाती रही हैं तो देखा गया है कि फौरन या कुछ अरसे के बाद कोई न कोई दहशतगर्दी का वाकया हो गया और जिसके बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जहां पर थे वहीं फिर पलटकर वापस चले जाते रहे। और अभी जब मालदीव में दोनों मुल्कों की मुलाकात हुई तो उसमें भी इस बात का इयादा किया गया कि दहशतगर्दी दोनों मुल्कों का मुश्तरका मामला है और मिलकर इसे हल करना चाहिए। और जाहिर है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बाज़ अनासिर ऐसे हैं जो इन ताल्लुकात को पसंद नहीं करते, तो अब अगर खुदा न खास्ता फिर ऐसा कोई मसला पेश आ जाए या आ जाता है तो क्या दोनों मुल्कों के रहनुमाओं में इतनी ज़र्फियत पाई जाती है और उनकी सीने इतना कुशादा हैं कि वो फिर पलट कर उस तरफ नहीं जाएंगे जहां पहले जाया करते थे, यानी ताल्लुकात में कशीदगी नहीं आने देंगे?
देखिए, आपने ये बिल्कुल ठीक कहा है कि दहशतगर्दी का कोई हादसा हो जाए तो एक तो वो है और दूसरा एलिमेंट है कुछ ऐसे मुल्क हैं कि जो बिल्कुल नहीं चाहते कि ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया मिलकर रहें। अगर ये सब मुल्क मिल जाएं तो फिर वो हथियार किसको बेचेंगे, फिर वो दादागिरी किस पर करेंगे, फिर वो कब्जा किस पर करेंगे? इसलिए जब ईरान, पाकिस्तान और भारत मिलके एक गैस लाइन लाने की बात करते हैं तो वड़ंगा लगा देते हैं, और जब तुर्कमेनिस्तान तैयार होता है तब भी वो ऐसा दांव पेच मारते हैं कि ये बात सिरे चढ़े ही नहीं। पूरे यूरोप में तो गैस लाइन बिछ जाए लेकिन जनूबी एशिया में ना बिछे, ये क्या बात हुई? मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि अगर हम चारों पांचों मुल्क एक हो जाएं तो बाहरी मुल्कों से ज्यादा खुशहाल हो जाएंगे, ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे,
बेशक
हमारी पर कैपिटा इनकम यूरोप और अमेरिका के देशों से ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेस हैं सारे इलाके में कि वो सिर्फ हमारे लोगों के लिए ही नहीं पूरी दुनिया को खिला पिला सकते हैं, पूरी दुनिया को मालेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन अड़ंगों के बावजूद हमको अपनी राह पर कायम रहना चाहिए, और मैं तो शुरू से ये बात कहता रहा हूं कि दहशतगर्दी का कोई बड़ा हादसा हो जाए तो उससे धक्का तो बहुत लगता है, आम आवाम में तहलका मच जाता है, लेकिन एक बात जो मुझे अंदर से लगती है और उन दिनों भी मैं कहता रहा जब बंबई का हादसा हुआ कि बातचीत बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो सिविलियन सरकार है, और जैसा कि मैं खुद सारे बड़े नेताओं को पाकिस्तान के जानता हूं और वहां जाता रहता हूं, मैं नहीं सोचता हूं कि वो लोग हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि दहशतगर्द लोग नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये बात पार्शली बिल्कुल ठीक है कि वो लोग अपनी मर्जी से कुछ न कुछ करते रहते हैं, तो जो जरायम पेशा लोग हैं, ऐसी हालत में मेरा यह कहना है कि दोनों मुल्कों के बीच जो ताउन का एक माहौल बन रहा है उसको तो हर हाल में बनाए रखना चाहिए, और उससे दहशतगर्द लोगों पर भी असर पड़ेगा, वो खुद अपनी गलती महसूस करेंगे। देखिए, जो दहशतगर्द लोग हैं इनको दूसरे जरायम पेशा लोगों से इनकी तुलना नहीं करना चाहिए, उनके जैसा उनको नहीं बताना चाहिए, उनके पीछे भी कुछ ख्यालात हैं, उनसे बहस करनी चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, आखिर में वो भी हमारे भाई हैं, वो भी नौजवान हैं, उनके दिमाग में भी एक खास तरह का आइडियलिज्म है जो कि हमको ठीक नहीं लगता है, उनसे खुल के बात करना चाहिए। उनके बारे में दुश्मनी रखने से, हमेशा उनको कंडेम करने से मैं समझता हूँ कि काम नहीं बनेगा। जब हादसा कोई होता है तो उसके मुकाबिल तो पूरा इंतजाम करना चाहिए, उसको रोकने की भी कोशिश करना चाहिए, लेकिन इन लोगों से बातचीत करना भी बहुत जरूरी है और मिलके करें बातचीत, पाकिस्तान भी करे, भारत भी करे, अफगानिस्तान भी करे। बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि गिलानी साहब को, जरदारी साहब को और जनरल कयानी साहब को, इन सब लोगों को मिलके भारत से बात करनी चाहिए कि कैसे हम अफगानिस्तान में शांति कायम करें, अमन कायम करें। अगर भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर अफगानिस्तान में एक साथ कोशिश करें तो अमरीकी फौजों की वापसी हो सकती है और ईरान का भी हम सहयोग ले सकते हैं, ताबुन ले सकते हैं। भारत, पाकिस्तान और ईरान तीनों मिलकर अफगानिस्तान को महफूज कर दें, अफगानिस्तान को मालामाल बना दें, तो हम समझते हैं कि पूरे एशिया का चेहरा बदल जाएगा। ये काम अब हो सकता है क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत में जो भी हालात हैं उनकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करूँगा, लेकिन वो सचमुच अमन चाहने वाले आदमी हैं। मैं बहुत बरसों से उनको पर्सनली जानता हूँ। वो झगड़े फसाद में बिल्कुल भी एतबार नहीं करते हैं। और गिलानी साहब और आसिफ जरदारी जी भी, जिनसे मेरा सीधा ताल्लुक़ है, मैं मानता हूँ कि ये लोग बहुत ही वेल इंटेंशनड हैं। इनके दिल में कोई बुरी बात नहीं, इनका मंशा बहुत अच्छा है। और ये मौका है कि हम पूरे साउथ एशिया को, जनूबी एशिया को यूरोप से बेहतर बना दें। यूरोप में उतनी एकता नहीं है जितनी हम लोगों की एकता है। हम लोग तो एक फैमिली हैं। ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, हम सब लोग एक बड़ी लार्जर आर्यन फैमिली हैं। हम सबको आपस में जोड़ना और एक परिवार की तरह रहना, एक कुटुंब की तरह रहना, एक कबीले की तरह रहना हम लोगों के लिए ज़्यादा आसान है। ये काम अब होना ही है, अगले 5 साल में हमको करके दिखाना ही चाहिए
जी।
और मुझे लगता है कि अल्लाह ताला का फजल होगा तो ये काम पूरा होगा
जी। सदर अजहर साहब, माजी में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत होती थी और तआवुन या ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिशों का जिक्र होता था, तो पाकिस्तान की तरफ से ये मौक़िफ़ रखा जाता था कि कश्मीर कोर इशू है, पहले इसे हल होना चाहिए। और हिंदुस्तान का ये कहना होता था कि जो मसले हल होने में जिनमें ताखीर हो सके या देर लग जाए उनको आप उनकी जगह रख दें, बाकी जो मसाइल फौरी तौर पर हल हो सकते हैं उनको हल किया जाए और जो वक्त लगने वाले मसाइल हैं, वक्त तलब मसाइल हैं, उन पर बाद में गुफ्तगू होगी। चुनांचे अब जिस तरह से तजारती फरोग पर बात हो रही है, पसंदीदा मुल्क का दर्जा करार दिए जाने की बात हो रही है पाकिस्तान की तरफ से भी, हिंदुस्तान की तरफ से भी। अभी पाकिस्तान का एक तजारती वफद नई दिल्ली गया था 2-3 रोज़ कबल, वहाँ पर बहुत सारे मामलात पर इत्तेफाक़ हुआ है। तो क्या ये समझा जाए कि पाकिस्तान अपने इस मसले से कि जब तक मसले कश्मीर हल नहीं होगा कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी, किसी हद तक पीछे हट गया है?
बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि 2003 में जब हिंदुस्तानी पार्लियामेंट पर हमले का ड्रामा रचाया गया और फिर पाकिस्तान की हद पर सरहद पर फौजें आ गईं, तो उससे पहले मुसलसल पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान यही बात होती थी कि हम तिजारत से अपनी बात शुरू करें, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि नहीं करना चाहता था तो पाकिस्तान कहता था कि कश्मीर कोर इशू है और हम इसी पर बात करेंगे पहले और फिर कोई और बात होगी। लेकिन अब मोस्ट फेवर्ड नेशन और तिजारत की बात हो रही है और फिर दो कश्मीरों के दरमियान जो तिजारती मामलात शुरू हुए, तो पाकिस्तान इसको ऐसे ही समझता है। और पाकिस्तान ने इसकी मिसाल ऐसे दी है कि जैसे चीन जो है वो ताइवान को चीन ही का हिस्सा समझता है, लेकिन पूरी दुनिया और बिल्कुल अमरीका ताइवान को अलहदा मुल्क समझता है, लेकिन उसके बावजूद चीन ने ताइवान से तजारती ताल्लुकात बनाए हुए हैं और उसने उस टेरिटोरियल प्रॉब्लम को आगे नहीं आने दिया। और उसके अलावा चीन और हिंदुस्तान के दरमियान भी सरहदी तनाज़ात हैं और 1961-62 में उनकी एक बड़ी वार भी हो चुकी है और मेरा ख्याल है कि पिछले साल भी उनकी कोई झड़पें हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके दरमियान ताल्लुकात हैं और उनके दरमियान चोटी की आमदरफ्त है और उन्होंने वो उनके साथ वो मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने इस बात को समझा है और पाकिस्तान कश्मीर के मसले पर भी बात कर रहा है और वो हमेशा करता रहेगा क्योंकि हम कश्मीर से बहरहाल जुदा नहीं हो सकते, वो हमारी कमिटमेंट है कश्मीरी आवाम से और फिर यहाँ के लोगों से, तो मैं ये समझता हूँ कि उसके बावजूद अगर पाकिस्तान ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया है और तिजारत के मामलात को और आगे बढ़ाने की बात हुई है, तो मेरा ये ख्याल है कि फिर तो कश्मीर का मसला भी हल होने के हम ज़्यादा करीब आएंगे, जब एक दूसरे के दरमियान एतमाद की फ़ज़ा बढ़ेगी, जब एक दूसरे के ममालिक के हुकूमतें करीब आएंगी, आवाम करीब आएंगे, मीडिया एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करेगा। पहले तो बहुत हो गई, बहुत हो गई, एनएफ की बात होती थी, लेकिन अब अगर एक अच्छा माहौल बना है तो इसको जारी रहना चाहिए। और मैं एक और सवाल जो कि आप कर रहे थे और जिसके लिए मैं इंतजार में था कि मुझसे होगा, नहीं हुआ, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट जिसको फौज कहते हैं वो ऑन बोर्ड है। पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर ने जब ये बात कही तो उसके बाद हमारी फॉरन मिनिस्टर से क्वेश्चन हुआ कि क्या फौज ऑन बोर्ड है, और हमारा फॉरन मिनिस्ट्री जो है वो फौज के जेर असर समझी जाती है, तो हमारी फॉरेन मिनिस्टर खार साहिबा ने कहा कि बिल्कुल जो कैबिनेट फैसला करेगी वो पाकिस्तान का स्टेट फैसला होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि फौज ऑन बोर्ड है और फौज के जो अपने इंटरेस्ट हैं वो बाहमी तिजारत से और ज्यादा फ्लरिश होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि फौज इस सिलसिले में रुकावट नहीं है और पाकिस्तान की आवाम, हुकूमत और फौज हिंदुस्तान के साथ तिजारत और हिंदुस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात में पहली दफा अलाइन हुए हैं।
जी मैं ये सवाल आपसे अगले मरहले में कर नहीं चाह रहा था, खैर आपने अच्छा किया जवाब दे दिया। चलते हैं हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के दारुलहुकूमत श्रीनगर जहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। हाँ बताया कि सैयद अली शाह गिलानी साहब से रबता हुआ था मगर फिलहाल टेलीफोन लाइन की खराबी की वजह से रबता मुनक़ता हो गया। हमारे साथी कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा उनसे रबता हो। बहरहाल वैदिक साहब से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। वैदिक साहब, जो अभी तजारती माहदे हुए हैं और जिनमें बहुत सारी सहूलियात फराहम करने की बात की गई है, वीज़े में नरमी और कस्टम ड्यूटीज़ में काफ़ी हद तक कमी लाने की बात की गई है वगैरह वगैरह, तो इन पर अमल दरामद, अगर वैद साहब इजाज़त दे दें तो मैं गिलानी साहब से दोबारा रब्ता होगी, मुझसे सवाल करूँ फिर आपकी खिदमत में आता हूँ। सैयद अली शाह गिलानी साहब सलाम अलैकुम।
एक मिनट बोल लूँ।
जी जी सैयद अली शाह गिलानी साहब सलाम अलैकुम।
वो खाना खा रहा है, इसको 10 मिनट के ब्रेक कीजिए।
अच्छा 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 शुक्रिया। वैदिक साहब जी, जो मैंने सवाल आपसे किया था, बहरहाल ये लाइव प्रोग्राम की भी एक ये भी दिलचस्पी होती है। वैदिक साहब, जो मैंने आपसे सवाल किया था कि जो तजारती इत्तेफाक राय हुआ है उस पर अमल दरामद में कोई मुश्किल तो पेश नहीं आएंगी? वैद प्रताप वैदिक साहब,
मुश्किल तो आएंगी। जो पाकिस्तान के कुछ पुराने, जी हाँ, इसमें कुछ मुश्किलात पेश आ सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब पूरा बहाव इस तरफ हो गया है कि दोनों मुल्कों के मफाद करीब करीब एक ही हैं और दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, मैं खुद कश्मीर की पूरी आज़ादी का पक्का अलमबरदार हूँ। कश्मीर को वैसी ही आज़ादी होनी चाहिए कश्मीरियों को जैसी मुझको है, जैसी रिजा साहब को इस्लामाबाद में है, या जैसी जरदारी साहब को है, या जैसी मनमोहन सिंह जी को है। बिल्कुल ऐसी आज़ादी हर कश्मीरी को मिलनी चाहिए। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या कश्मीर अलगाव चाहता है या आज़ादी चाहता है? अलगाव चाहता है तो आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तो अलगाव के बेहद ज़्यादा खिलाफ है और भारत तो भी अलगाव का समर्थन नहीं करता है। आज़ादी दोनों तरफ के कश्मीरियों को मिलनी चाहिए, कश्मीरियों की सारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, उनके साथ पूरा इंसाफ होना चाहिए। कोई फौज वोज न इस कश्मीर में रहे न उस कश्मीर में रहे, वो अपना नेता खुद चुने, अपना कानून खुद बनाए, अपनी तिजारत खुद चलाएं, अपने मजहब को खुद माने, हर चीज़ जो वो चाहते हैं वो करें, बस दूसरों का नुकसान ना करे, ना पाकिस्तान का नुकसान करे, ना हिंदुस्तान का नुकसान करे। दोनों मुल्कों कोई एतराज़ नहीं होगा। और जैसा रजा साहब ने कहा कि हमारे बहुत सारे मतभेद हैं चीन के साथ, फिर भी हमारी चीन से बातचीत चल रही है। कई मुल्कों का आपस में ऐसी टकराव रहता है कई बड़े मुद्दों पर, लेकिन जो रोज़मर्रा के काम है वो बंद नहीं होते हैं। ये जो तिजारत का काम है, आने जाने का काम है, वीज़ा वगैरह के काम है, ये सब खुलना चाहिए। मेरा तो तसव्वुर कुछ ऐसा है कि कोई पाकिस्तानी किसी दिन हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बन जाए और कोई हिंदुस्तान का आदमी पाकिस्तान का राष्ट्रपति बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए। कोई ऐसा बड़ा कॉन्फेडरेशन बनना चाहिए पूरे साउथ एशिया का कि हमारे यहाँ का आदमी आपके यहाँ और आपके यहाँ का आदमी हमारे यहाँ हुकूमत करे और हमको ये लगे ही नहीं कि ये कोई दूसरा आदमी है, सब हमारे परिवार के लोग हैं, इनमें अलगाव किस बात का है? ये एक ज्योग्राफिकल जो डिस्टिंक्शन है भौगोलिक, वो बना रहे। लेकिन हमारी सियासत एक हो जाए, हमारी तिजारत एक हो जाए, हमारी ज़िंदगी का एक नक्शा एक जैसा बन जाए, ये सब काम हो सकता है। थोड़ा सा हम लोग दरियादिली का परिचय दें, थोड़ा सा हम लोग परिपक्वता दिखाएं, मैच्योरिटी दिखाएं, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के एकेडमिक लोग, पाकिस्तान के मुसफी लोग अब बहुत जबरदस्त मैच्योरिटी दिखा रहे हैं और जबरदस्त दरियादिली दिखा रहे हैं। और हम समझते हैं कि इसका सबसे ज्यादा सबसे जबरदस्त फायदा अगर किसी को होगा तो पाकिस्तान को होगा। आप सोचिए कि अफगानिस्तान से जब अमेरिकी फौजें चली जाएंगी और अमेरिका का यहां कम हो जाएगा इंटरेस्ट, तब पाकिस्तान क्या करेगा? आज पाकिस्तान का इक्तसादी हाल, उसका सियासी हाल, उसके और दूसरे हालात कितने परेशानी करने वाले हैं। मतलब मेरे जैसे हिंदुस्तानी को यहां बैठकर परेशानी महसूस होती है कि पाकिस्तान मजबूत क्यों नहीं है, पाकिस्तान खुशहाल क्यों नहीं है, पाकिस्तान के लोग मजे में क्यों नहीं रहते हैं, उनको हमारी तरह सब आनंद क्यों नहीं मिलता है। बिल्कुल मिलना चाहिए, वो हमारे भाई हैं। वो कैसे मिलेगा? वो तभी मिलेगा जब दोनों मुल्कों में, ये दो बड़े मुल्क हैं, इनमें ताऊन होगा। अगर इनमें ताऊन हो गया तो पूरे जनूबी एशिया के जितने 10-12 मुल्क हैं, इसमें मैं मुल्कों के बाहर भी जो लोग हैं उनका भी ख्याल करता हूं, जैसे तिब्बत के लोग हैं, सिंक्यांग के लोग हैं, जो आमू दरिया के पार रहने वाले लोग हैं, अरे वो सब हमारे लोग हैं, वो कोई पराये लोग थोड़ी हैं, हजारों बरसों से हम लोग साथ रहे हैं। अब इस 21वीं सदी में हम सबको साथ रहना है, एक परिवार की तरह रहना है। और हम समझते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा दरियादिली पाकिस्तान को दिखानी पड़ेगी, जो दिखा रहा है, तो मैं तो इसका इस्तकबाल करता हूं।
सफदर रजा साहब, अभी वैदिक साहब ने अपने इससे पहले वाली गुफ्तगू में ये कहा था कि सिर्फ हादसा ही नहीं होता है दहशतगर्दी का, बल्कि बाज अनासिर ऐसे हैं या कुछ कुवतें ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि खित्ते के ममालिक एक हों और उनमें आपसी ताल्लुकात और आपसी ताउन फरोग पाए। जाहिर है उनका वाज इशारा अमरीका की तरफ से था और उन्होंने गैस पाइपलाइन का भी जिक्र किया। तो आप देखें कि क्या पाकिस्तान में भी इस तरह के ख्यालात पाए जाते हैं कि ये अमेरिका ही है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान इनके ताल्लुकात के दरमियान आड़े आ रहा है और जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं उसमें अमेरिका का हाथ है?
बिल्कुल, पिछले चंद महीनों में, बिलखसूस जब से रेमंड डेविस का मसला हुआ है पिछले साल, यानी जनवरी फरवरी से लेकर आज तक पुलों के नीचे से काफी पानी बह चुका है। पाकिस्तान, जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो आज से सिर्फ चंद महीने पहले, 9-10 महीने पहले था। पाकिस्तान की पूरी रायामा एंटी अमेरिकन है। पाकिस्तान की कोई किसी को जरूरत नहीं है किसी पार्टी को कि अमेरिका के हक में बात कर सके। आपने देखा कि आज से कोई 30 अक्टूबर को इमरान खान ने लाहौर में रैली की और उसका वाज़े पैगाम एंटी अमेरिकन था। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी पार्टियाँ, बहुत सारे लोग, हमारे पॉलिटिशियंस अलग-अलग ना अमेरिका का नाम नहीं ले सकते, लेकिन मैं थोड़ा सा ये कहता हूँ कि थोड़ा सा अगर मुझे वैदक साहब की वो मोहब्बत का हमला मुझे मजबूर करता है कि मैं ये बात न कहूं, लेकिन अगर वो ये सह सके, पाकिस्तान में ये तासुर है कि अमेरिका का हिंदुस्तान में ज्यादा असर है और अब वो पाकिस्तान को जंग का सामना किए हुए, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब से 7-8 घंटे पहले उसने ड्रोन हमला किया है पाकिस्तान में, 7-8 लोग मारे गए हैं। मुसलसल पाकिस्तान के अंदर जितनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां होती हैं, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को मालूम है कि ये अमेरिकन आशीर्वाद से हो रही हैं और अमेरिका है जो कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में शदीद मदाखलत करता है। कल उन्होंने हमारे एयरपोर्ट और GHQ के करीब जाके अमेरिकन सफारत खाने के लोगों ने तस्वीरें ली हैं, और वो वक्त गुजर गए कि वो लेके आ जाते थे और हम कुछ नहीं कहते थे। अब हमने उनको रोका है, गिरफ्तार किया है, अमरीकी सफारत खाने को वजाहत जारी करना पड़ी है। आप देखें कि पाकिस्तान के सफीर आज अमेरिका में, पाकिस्तान के सफीर हुसैन हकानी आज वापस पाकिस्तान में आए हुए क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बात की है जो कि प्रो अमेरिकन बात थी, तो हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने, पाकिस्तान की कैबिनेट ने उनको बुला लिया। पाकिस्तान वो प्रो अमेरिकन नहीं है पाकिस्तान, बल्कि इस वक्त अमेरिका के खिलाफ शायद अंदरूनी जंग का शिकार है और पाकिस्तान की रायामा मुकम्मल एंटी अमेरिकन। और हम समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के इर्द गिर्द होने वाली और हद तक के मुंबई हमले भी अमरीकी थे। ये दहशतगर्द तो अमरीका के पाले हुए लोग हैं, ये तो अमरीका के स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी हैं। ये तालिबान और ये अलकायदा तो अमरीका की अपनी, ओसामा बिन लादेन तो अमरीका का लाया हुआ आदमी था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अमरीकी मफादात की जंगें हैं, ये अमरीका को फायदा पहुंचाने का स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए और पाकिस्तान एक बड़ा तब्दील शुदा मुल्क बन चुका है, इसलिए पाकिस्तान ने मोस्ट फेवर्ड नेशन किया है क्योंकि हमें उन बुतों से नाउमीदी हो गई है और हम अपने दोस्तों से उम्मीद रखते हैं और हम यहीं अपने एशिया में ही, चाहे वो चीन हो चाहे वो हिंदुस्तान हो, इन्हीं पर हमें तकिया है और हम इन्हीं अपने, आपने देखा कि कुछ अर्से में बहुत तेजी से मामला तय पाए हैं और तुर्कमानिस्तान के साथ हमने गैस का मुआहदा किया है,
उसके अलावा
हम ईरान के साथ गैस का मुआहदा हुआ है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी गैर से उम्मीदें हट गई हैं और हम अपने
बहुत शुक्रिया सदर साहब नवाज़िश। इस वक्त चलते हैं श्रीनगर जहाँ पर मौजूद हैं बुजुर्ग कश्मीर रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।
काफी देर से आपका इंतजार हो रहा था। बहरहाल गिलानी साहब, बात ये हो रही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वज़ीरे आज़म ने मुलाकात की और दोनों एक दूसरे के करीब आने के अज़्म का इजहार कर रहे हैं, लेकिन आप लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान को पसंदीदा मुल्क का दर्जा करार दिए जाने की मुखालफत की, क्यों आखिर?
भारत और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती हो जाए या वो आपस में तजारत वगैरह करें, हम उसकी मुखालफत नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का मसला गुज़श्ते 64 साल से लटका चला आ रहा है, इस पर पाकिस्तान ने भारत के साथ 3 जंगें लड़ी हैं और कश्मीर के मसले की वजह से ही पाकिस्तान का मशरिकी बाजू काट कर बांग्लादेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर के मजलूम आवाम ने 47 से लेकर आज तक 6 लाख जानों की कुर्बानियां दी हैं और पाकिस्तान इस मसले का एक फरीक है, तो एक फरीक को दूसरे फरीक के साथ दोस्ती गांठना और तजारत के ताल्लुकात उस्तवार करना और उनसे बगलगीर होना, जबकि जम्मू कश्मीर के आवाम को जुल्म और जबर का निशाना बनाया जा रहा है और जिन लोगों के साथ पाकिस्तान के हुक्मरान हाथ मिलाते हैं उन लोगों के हाथ जम्मू कश्मीर के मजलूम आवाम के खून से भरे हुए हैं, तो ये तो बहरहाल जम्मू कश्मीर के मजलूम आवाम के लिए बहुत ही नाखुशगवार सूरत हाल है जिसका उन्हें सामना करना पड़ रहा है।
अली शाह गिलानी साहब, क्या आप नहीं समझते कि जब दोनों ममालिक के करीब होंगे और बहाल ये एतमाद यानी मुहक्क हो जाएगा और दोनों में एतमाद बहाल हो जाएगा तो कश्मीर का मसला ज्यादा आसानी से हल हो सकेगा?
ये सुरचाल नहीं है। भारत की जो पॉलिसियां हैं वो तौसी पसंदाना पॉलिसियां हैं और वो इंतहा दर्जे का साम्राज्य रोल जम्मू कश्मीर में अदा कर रहा है। यहाँ उसकी 10 लाख के करीब फौजें हैं और 1 लाख पुलिस है जो फौज के इशारों पर काम कर रही है और यहाँ की जो नामनिहाद इंतजामिया है वो फौज के जेर असर है, फौज के कंट्रोल में है। यहाँ फौज का राज है, यहाँ फौज का कानून चल रहा है, यहाँ बंदूक की नोक पे लोगों को जेलों में ठोंसा जा रहा है, हाउस अरेस्ट रखा जा रहा है महीनों और साल भर, और फिर ऐसी सूरत हाल का कोई हमसाया और जो अपने आप मोहसिन मुल्क कह रहा है वो इस सूरत हाल की का कोई नोटिस ना ले तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि मजलूम आवाम पर उसका क्या असर पड़ेगा।
जी बहुत शुक्रिया नवाज़िश। सदर साहब, 1 मिनट का वक्त बचा है और चूंकि 30 सेकंड का, इन्होंने कहा कि मोहसिन और हमसाया मुल्क यानी पाकिस्तान ने बगलगीर होने का फैसला किया, अच्छा नहीं किया, बहुत मुख्तसर जवाब चाहूंगा सदर साहब।
मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की पार्लियामेंट कभी भी कश्मीर के मसले को पीछे नहीं रख सकती है, लेकिन बहरहाल वो कश्मीर के साथ मिलकर और कश्मीरी लीडरों को एतमाद न मिले के ही कोई करेगा। मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज में ही कहा था कि हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का रुतबा दिया नहीं है, देने वाले हैं, इस पर कंसेंसस होगा और कश्मीरियों को लिए बगैर पाकिस्तान बिल्कुल नहीं जाएगा, लेकिन
बहरहाल
सारे मामलात का हल मुज़ाकरात और बाहमी ताल्लुकात की बेहतरी में ही।
बहुत शुक्रिया नाज़रीन, वक्त हमारे पास बिल्कुल नहीं है, दीजिए पदार्थ।